शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पंचदशी ग्रंथ के ध्यान दीप प्रकरण का 40वां श्लोक है, जिसका विचार कल हम लोगों ने किया था। प्रतिबंध का प्रसंग चल रहा है। प्रतिबंध जो होता है तीन प्रकार का बताया गया, भूत भावी वर्तमान। तो इस प्रकार का जो प्रतिबंध है तथा किमेति आह, वो प्रतिबंध क्या है, कैसा है, किस तरह से उसको समझे, तो उसके लिए हिरण्य निधि का दृष्टांत देकर के 40वें श्लोक में बताया कि जमीन में जो दबाव हुआ धन है और जमीन के ऊपर चलने वाला सेठ का लड़का है, उस धन और सेठ के लड़के के बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ है जो उस धन को देखने नहीं देता, वो पत्थर ही प्रतिबंध है। पत्थर को हटा देवे तो धन तो सामने है, प्रत्यक्ष है। साधना सदन वाले पूज्य महाराज श्री जी कहते हैं कि आपका आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, हमेशा आत्मा प्रत्यक्ष है, लेकिन एक जो पर्दा है अविद्या का, वो पत्थर की तरह पड़ा हुआ है और उस पत्थर को उखाड़ के फेंकने में ही लगे हुए हैं, लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वो प्रतिबंध है उसको हटाने में, परंतु पत्थर कितना भारी है ये देखना पड़ेगा, कब से पड़ा हुआ है ये देखना पड़ेगा, कब तक नहीं हट सकेगा ये विचार करने की चीज है। ये अविद्या आवरण जो पड़ा हुआ है उसका, तत्व ज्ञान का, साक्षात्कार का जो प्रतिबंधक है, उसके निवृत्ति का ही बार बार अभ्यास करते हैं, विचार कर रहे हैं। विचार पर ही प्रतिबंध बीच में आया है कि बार बार विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और विचार करते करते यदि जिंदगी ही पूरी हो जाए तो कहते होने दो, पर हताश मत हो, आपने प्रयास में कोई प्रमाद मत करो, कोई खामी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है, प्रतिबंध हटेगा तो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार होगा, मुक्त अवस्था की अनुभूति होगी। उस प्रतिबंध के स्वरूप को बताने के लिए तीन प्रकार का जो बताया गया है, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यतकालिक प्रतिबंध। आज यहां पर पहले भूतकालिक प्रतिबंध का उदाहरण देकर के बता रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, 41वें श्लोक का उच्चारण कर ले।
अतीतेनापि महिषी अतीतेनापि महिषी स्नेहेन प्रतिबंधतः भिक्षोस्तत्वं न वेदेति भिक्षोस्तत्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते। अतीतस्य प्रतिबंधकत्वं, ये जो अतीत कालीन प्रतिबंध है, न दृष्टमिति कहते हो, दिखाई तो नहीं पड़ता है, भूतकालिक प्रतिबंध तो कुछ दिखता नहीं है, कहते हैं दिखाई पड़ता है, देखो उसको अनुभव करो। उसका उत्तर दे रहे हैं,
अतीतेन अपि महिषी स्नेहेन प्रतिबंधतः भिक्षुः तत्त्वं न वेद इति। सीधा 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 अन्वय लगा लो। कहते हैं भिक्षु अतीतेन अपि महिषी स्नेहेन प्रतिबंधतः तत्त्वं न वेद। एक भिक्षु था, इसके पीछे कथा तो प्रसिद्ध ही है। भिक्षु किसको बोलते हैं? जो भिक्षाचर्य करता है, सन्यासी को भिक्षु बोला गया है। क्यों भिक्षु बोलते हैं? भिखारी में और भिक्षु में क्या फर्क है? क्या अंतर होगा? अरे भिखारी की भिक्षा में और भिक्षु की भिक्षा में तो रात दिन का अंतर है। किसी भिखारी को भोजन दिया उसका पुण्य अवश्य मिलेगा, लेकिन भिक्षु को भोजन दिया है तो कुल ही पवित्र हो जाएगा, सारा अन्न ही पवित्र हो जाएगा। भिक्षु को अन्न देने का अर्थ है साक्षात परमात्मा को ही भोग लगाया है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जिसने परमात्मा को जाना वो तो स्वयं परमात्मा स्वरूप ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है। और भगवान को भोग लगाने के बाद जो होता है उसको प्रसाद बोलते हैं। प्रसादे सर्वदुखानां, अर्थात प्रसाद प्राप्त हो जाए तो उससे चित्त की निर्मलता मिलती है, चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होकर के उसको तत्व ज्ञान होता है। इसलिए भिक्षु का अर्थ यहां पर भिखारी मत करना। वो व्यक्ति है पुत्रेष्णाया वित्तेष्णाया लोकेष्णाया च समुत्थाय भिक्षाचर्यां चरन्ति। ऐष्णा त्रय से ऊपर उठ करके केवल शरीर स्थिति निर्वाह के लिए भिक्षाचरण कर रहा है। वहां शाम को स्पिरिचुअल सेंटर में प्रसंग चल रहा था वैथत्य प्रकरण का। इसे भिक्षु के लिए बहुत अच्छी बात वहां पर आई। वैथत्य प्रकरण में आया कि ऐसा भिक्षु पुरुष जिसके केवल दो ही घर हैं, व्यवहार काल में भूख आदि लगती हैं, तो शरीर स्थिति के लिए भिक्षा कर लेना, एक वस्त्र से तन को ढक लेना लोक लज्जा निवारण के लिए, बस इतना सा जिनका काम बाकी रह गया, मैं ब्रह्म हूं ये विस्मृत होकर के जब शरीर में भूख प्यास आदि लगती है, सर्दी गर्मी लगती है, तो उतना मात्र जिनको संग्रह है, भिक्षा किया और भोजन कर लिया, शरीर को कौपीन धारण कर लिया, बस इतना ही जिनका संग्रह है, बाकी ब्रह्म निकेत है, परमात्मा भाव में अचल निकेत है, उस अचल स्थिति में निवास करता है। ऐसा जो पुरुष होता है उसको भिक्षु बताया गया है। माने सब कुछ सुखदेव जी महाराज का भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आया। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामट मानोनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्ट वृतैश्य बालै रवदूत वेश। यह भिक्षु, ऐसा भिक्षु पुरुष है, परीक्षित ने देखा कि साक्षात भगवान सुखदेव जी महाराज वो भगवान ही है, क्योंकि मां के गर्भ में जब मेरे ऊपर संकट आया था तो सुदर्शन चक्र के द्वारा जिस भगवान ने वहां मेरी रक्षा की थी, आज वही भगवान जगतगुरु सुखदेव जी महाराज मेरे गुरुदेव बन करके और संसार के आवागमन से ही मेरी रक्षा करने के लिए आ गए हैं। जो गर्भ में रक्षा कर रहा था वो जन्म मरण से रक्षा करने के लिए गुरु बनकर के सामने आ गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र कैसे हैं? यदृच्छया गामट मानोनपेक्ष। यदृच्छया अनायास जो प्राप्त हो जाता है उसको ग्रहण कर लिया, केवल भूख क्षुधा की निवृत्ति के लिए, और जिधर मुंह हो गया उधर चले गए, कोई योजना प्लानिंग नहीं है कि आज फलानी जगह की टिकट बनी हुई है मुझे वहां जाना है, वो जिधर मुंह हुआ उधर चल दिए। अनपेक्षा कोई अपेक्षा कोई इच्छा नहीं है,
ऐसे जो गुरुदेव हैं ईदृश या गामट मानोनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज राबतुष्ट है। परमात्मा का की क्या पहचान होती है बताइए, वो परमात्मा स्त्री होता है कि पुरुष होता है, परमात्मा ब्राह्मण होता है कि क्षत्रिय होता है, कौन होता है, उसकी पहचान क्या है? जिसकी कोई पहचान नहीं है अलक्ष्य लिंग, न स्त्री न पुमान एष न चेवायम न पुंसक, यद यद शरीरम आदत्ते तेन तेन स युज्यते। अरे वो परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है न ब्राह्मण है न वैश्य है, उसकी कोई पहचान नहीं, कोई लिंग नहीं है, पहचान को बोलते हैं। इस प्रकार से यदृच्छ या गामट मानोनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्ट, निज को ही प्राप्त किया है, निज लाभ हुआ है, ब्रह्म भाव को प्राप्त पुरुष है, इसलिए पूर्ण संतुष्ट है। वो गुरुदेव आ गए, वो भिक्षु है महाराज। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनको भिक्षु कहा है। भिक्षु और भिखारी में बहुत बड़ा अंतर है। प्रत्यक्ष बाले रवधूत ऐसे न मान सम्मान की जरूरत है उनको, बालकों के द्वारा मूर्खों के द्वारा तिरस्कार किया जा रहा है, ग्रामीण स्त्रियां गालियां दे रही है, नंग धड़ंग पागल कहां से आ गया, भगाओ इसको। लेकिन उसका अपमान का भी कोई, अरे मान का जो आनंद लेगा ना उसको अपमान के जहर की घूंट पीनी पड़ेगी, पर जो मान का रस नहीं लेता उसका अपमान क्या है? माना अपमान यो तुल्य है, दोनों में समान रहने वाला जो पुरुष है ये है भिक्षु, उसको भिक्षु बोलते हैं। एक कोई भिक्षु था, पहले गृहस्थ था, घर में भैंस पालता था। महिषी के दो अर्थ होते हैं, एक महिषी शब्द का अर्थ होता भैंस और दूसरा महिषी का अर्थ होता रानी, राजा की जो पत्नी होती है उसको भी महिषी बोलते हैं, रानी को भी महिषी बोलते हैं। पता नहीं कहां से कहां संबंध जोड़ा है, अर्थ दोनों का है। ये अमर कोश है ना, जहां शब्दों का कोश है, पुस्तक है, वो सारे अर्थ उसमें, तो धातु एक अर्थ अनेक होते हैं उसके। तो यहां पर भैंस का अर्थ कर लो, रानी जी को रहने दो बेचारी को। वो गृहस्थ था, उस जीवन में कारस्थ्य जीवन में भैंस पाली घर में, पर पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जगे, हो सकता था प्रेमपुरी में आता हुआ और रोज वेदांत स्वाध्याय सुनते सुनते वैराग्य जगाया और संसार से वैराग्य हुआ। यम प्रवरजन तम अनुपेतम अपेत कृत्यम वाली बात हो गई, सब कृत्य छोड़ करके और वन प्रवर्जन कर जाए, परमात्मा की ओर चल पड़े, संतों के साथ लग गए। हो महात्मा आए, कोई मंडली में सम्मिलित हो गए, महात्मा लोग एकांत में अपना कहीं अच्छी जगह देख करके, नर्मदा के तट पर, गंगा के तट पर शांत एकांत जगह थी, वहां अपना सत्संग स्वाध्याय नियमित करते रहे। ये नया नया ब्रह्मचारी फिर महात्मा बना, तो महात्मा ने गुरुजी ने उसको भी दीक्षा तो दे दी और एक गुफा बता दिया कि इस गुफा में बैठो और अपने आत्मा का ध्यान करो, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, इस आत्मा का जो विजातीय वृत्तियां आती है उसको हटाते जाओ और नाम रूप को बाध करके मैं हूं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं इस रूप से चिंतन करो, बता दिया। अब वो गुफा में जाकर के नया नया महात्मा बैठा, गुरुजी ने बताया, वो चिंतन करने लगे। वो चिंतन तो कब छूट जाए और उसके माथे में तो भैंस आकर के बैठ जाए, वो मन तो भैंस में रंग जाए, क्योंकि वो गारस्ते जीवन में भैंस पाल के रखी थी, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, भैंस छोड़ दी, पर भैंस वहां रह गई, पर भैंस के जो स्नेह है, भैंस का प्रेम है, भैंस के प्रति जो उसका आत्मीयता का भाव था, मेरी भैंस बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है, बड़ा दूध देती है, बड़ी भोली भाली है, बड़ी सीधी सादी है, वो जो भैंस के प्रति स्नेह था वो साथ में आ गया। भैंस तो रह गई वहीं पर, भैंस नहीं आई, तो भैंस का स्नेह उसके साथ में आ गया। अब ध्यान करने बैठता है तो परमात्मा का ब्रह्म ध्यान तो न, और बार बार वो भैंस ही भैंस याद आवे। बहुत सारों को ऐसा होता होगा, स्वाध्याय सत्संग में आने पर भी घर में पौत्र परपोत्र आया है, अभी दो चार महीने छह महीने का है, साल भर का है, तुतली तुतली भाषा में बड़ा है, तो बैठे बैठे कौन याद आ जाता है, आ गया होगा, बैठ गया होगा, क्योंकि उसका स्नेह साथ में आ गया। बालक तो घर में, पर उसका स्नेह मन में आ गया, साथ में आ गया। वो महाराज ध्यान कर दे बैठे, मन न लगे। तीन घंटे का नियम था महात्मा का, कम से कम तीन घंटे एक आसन पर बैठ करके ध्यान करो, आसन सिद्ध हो जाएंगे। उसको तीन घंटा क्या, वो घंटे भर में निकल के वापस आ जाए, हर दिन यही स्थिति। तो एक दिन गुरुजी ने पूछा, तुमने घर परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, भगवान का भजन करने के लिए, आत्मचिंतन के लिए सन्यासी बने, तो फिर बाहर निकल करके क्या करते हो, गुफा में बैठ करके आत्मचिंतन करो ना, ब्रह्म भाव का चिंतन करो। बोले महाराज क्या करूं, चिंतन करता हूं पर होता ही नहीं है, मैं तो जो ही चिंतन करने बैठता हूं भैंस का चिंतन होता है, भैंस ही भैंस याद आती है। वो गुरुजी समझ गए कि कोई प्रतिबंध है, कोई रुकावट है, इसलिए आत्म साक्षात्कार नहीं होने दे रहा। तो गुरुजी ने उसको एक दिन कहा कि भैंस तो याद आती है, ने कहा हां चल कल ऐसा काम करना, वो तो भैंस का ही ध्यान करना, ध्यान भैंस का ही करना। तो कहा गुरुजी वो तो बिना किए ही हो जाएगा, तो कहा जो होता है वो होने दे, जहां तुम्हारा मन जा रहा उसको वहीं जाने दे, भैंस का ही ध्यान करना। तो दूसरे दिन गया गुफा में बैठा और ध्यान करने लगा भैंस का, और इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया, ध्यात्री ध्याने परित्यज्य कर्माध्येयक गोचरम, वो समाधि का लक्षण आया, इस पंचदशी में आया है। ध्यात्री ध्यानम परित्यज्य, ध्याता हूं ध्यान कर रहा हूं, ये वृत्ति तो समाप्त हो गई, ध्येय कार वृत्ति रह गई। ध्येय कौन था, भैंस, उसकी वृत्ति बिल्कुल भैंसमय हो गई। घंटा तो क्या, तीन घंटे भी उसको ध्यान नहीं रहा कि तीन घंटे पूरे हो गए, तीन मिनट की तरह निकल गया। सारे महात्मा अपना ध्यान समाधि से बाहर आए, आज वो महात्मा जी नहीं आए जो रोज आगे मिला करते थे तैयार। गुरु जी ने देखा कि आज समाधि लग गई, आवाज लगाई, हो महात्मा, एक दो तीन चार जोर से आवाज लगाई, उसकी ध्यान विचलित हुआ, गुरु जी की आवाज आई, जी गुरुजी, अरे बाहर आओ, भिक्षा का समय हो गया है। वो कहता गुरुजी बाहर आऊं, लेकिन गुफा का दरवाजा तो बहुत छोटा है, मेरे सिंह तो बड़े बड़े हैं, सिंह टकरा जाएंगे, कैसे निकलूंगा, सिंह टकरा जाएंगे, दरवाजा बहुत छोटा सा है। महात्मा जी बोले तो सिर को टेढ़ा मेढ़ा करके निकल जाना, लगेगी नहीं। खड़ा हुआ, बाहर निकला, गुरुजी ने कहा तेरे सिंह कहीं गुफा में टकराए तो नहीं? बोले नहीं गुरुजी, एक चेटा मारा, तेरे सिंह कहां है? तब उसको होश हुआ कि मैं भैंस का ध्यान करते करते भला मैंने अपने आप को ही भैंस समझ लिया, भैंस समझ लिया। अब बताइए, ध्यान तो भगवान का करना था और वृत्ति भैंस में कैसे अटक गई? भैंस के प्रति जो स्नेह बुद्धि थी, प्यार प्रेम था, अपनत्व था, वो स्नेह बुद्धि परमात्मा के चिंतन में बाधक बनी, ब्रह्म साक्षात्कार में बाधक बनी। तब महात्मा ने कहा एक काम करो, अगर भैंस के माध्यम से तुम्हें ध्यान होता है तो भी तुम अपना कल्याण कर सकोगे, बेटे के माध्यम से नारायण का नाम जब कल्याण कर सकता है तो भैंस के माध्यम से परमात्मा का चिंतन क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें एक काम करना कि वो जो भैंस तुम्हारे सामने मन में आती है, तुम उसमें भैंस की आकृति का ध्यान मत करना, ये मेरी भैंस है ऐसे करके ध्यान मत करना, अपितु उस भैंस के अंदर जो सदअंश है, जो चिद अंश है, जो प्रियता है उसको ध्यान करो, उसका चिंतन करो कि ये जो भैंस दिख रही है करके जो मालूम पड़ रहा है उसे अस्तित्व तत्व के होने के बिना ये आकृति नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए आकृति उस सदअंश में ही दिख रही है। इसका ज्ञान हो रहा है, इसका अर्थ है कि वहां पर चिदंश विद्यमान है। इसमें जो प्रियता है वो प्रियता, वो प्रेम, वो आनंद, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। नाम और रूप को छोड़ करके ये भैंस किस पर दिख रही है? सच्चित आनंद स्वरूप में ही भैंस की प्रतीति हो रही है। इसलिए नाम रूप का चिंतन मत करना, और भैंस में जो सदअंश है, चिदंश है, आनंद अंश है, उस अंश को लेकर के भैंस का ध्यान करना। तो उस वस्तु में भी एक दिन बता रहा था प्रवचन के प्रसंग में, भाई अस्थि भाति को बात प्रियता को चिंतन करने के लिए नाम रूप को बाधित कर दो। कपड़े का उदाहरण दिया था कि कपड़े के का कलर और डिजाइन को छोड़ करके उसकी क्वालिटी का चिंतन करने लग जाओ, समझ में आ जाएगा कि कपड़ा क्या चीज है, कॉटन है कि पॉलिस्टर है। ठीक इसी प्रकार से जो दृश्य जगत सामने आ रहा है उसके नाम रूप का चिंतन छोड़ करके उसकी क्वालिटी का विचार करना शुरू कर दो। शरीर किससे बना हुआ है? पंचभूत से बना हुआ है। ये पंचभूत किससे बने हैं? तन्मात्राओं से बने हैं। तन्मात्रा किससे बनी है? तत्त्व कारण में जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, पुरुषाद न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, अंत में वो पुरुष परमात्मा ही शेष रहेगा, सब बाधित होते जाएंगे। तो उसी में चिंतन करो। इस प्रकार से जब गुरु के कहने पर भैंस में ही उस परमात्मा का चिंतन करने लगा तो नाम रूप का प्रियता भैंस के प्रति जो थी नाम रूप में उसका बाध होकर के और उस परमात्मा का साक्षात्कार होने लगा, उसकी वहीं समाधि लग गई। तो ये कौन सा प्रतिबंध था? कहा ये भूतकालिक प्रतिबंध था। अभी भैंस नहीं है पास में, पर पहले जो भैंस रखी है उसके प्रति जो स्नेह बुद्धि बन गई वो स्नेह बुद्धि आज भी प्रतिबंधक बनी हुई है। ऐसे ही हमारे चित्त में कभी भी हम चिंतन करने बैठते हैं तो जरूरी नहीं है कि वर्तमान का ही मन चिंतन करता है या आने वाले समय का क्या होगा कैसे होगा। अरे जो हो गया घड़े हुए भूत निकालता है, जो जिसका कोई चिंतन का अर्थ नहीं है उसका व्यर्थ में चिंतन करता है। किस लिए करता है? ये कोई भूतकालिक प्रतिबंध है जो ब्रह्म चिंतन में आकर के बाधक बन जाता है। वही उदाहरण यहां पर दिया है। अतीते नापि महिषी स्नेह न प्रतिबंधत तत्वम न वेदयति। वो जो भिक्षु है पहले भैंस के प्रति जो स्नेह बुद्धि रही है वो स्नेह बुद्धि ही उसका प्रतिबंध बन गई है, और तत्वम न वेदयति, उस भिक्षु को तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। ये गाथा लोके प्रगीयते, ये जो दंत कथा है संसार में लोक में बड़ी ही प्रसिद्ध है। अयम अर्थ कश्चिद यति पूर्वम गारस्त्य दशायाम कश्यांचित महिष्याम स्नेहम कृत्वा पश्चात संन्यासानंतरम श्रवणे प्रवृत्तोपि तेनैव स्नेहेन जनितात् प्रतिबंधात् तत्त्वं गुरुणोपदिष्टमपि न ज्ञातवान् इति एवं विधा गाथा लोके प्रगीयते न पुराणादेशो पठ्यते इत्यर्थ। कथा मैंने आपको सुनाई वही बात है। कोई यति है जो पहले गारस्थ्य जीवन में किसी भैंस के प्रति स्नेह कर लिया था और भैंस में स्नेह करके पश्चात संन्यासानंतरम श्रवणे परिवर्त, फिर बाद में संन्यास ले लिया और संन्यास के बाद में वो श्रवण कार्य में प्रवृत्त हो गया, रोज सत्संग सुनने के लिए जाता। संन्यासानंतरम श्रवणे प्रवृत्तोपि, श्रवण कार्य में प्रवृत्त होते हुए भी तेनेव स्नेहेन जनितात, पर वो भैंस के प्रति जो स्नेह था उस स्नेह के उत्पन्न हो जाने से प्रतिबंधात, चूंकि वही प्रतिबंध है भैंस का स्नेह। अरे श्रवण करने में तो आत्मचिंतन होना चाहिए, लेकिन वो जो भैंस का है प्रति जो स्नेह था उसका, वही स्नेह बार बार जागृत होता, वही वृत्ति बन जाती है। और तत्वम गुरुणोपदिष्टम अपि, गुरु जी के द्वारा उपदेश किए जाने पर भी तत्व का ज्ञान नहीं हो रहा, गुरु साक्षात उपदेश दे रहे हैं उस परमात्मा तत्व का, परंतु फिर भी उसको अनुभव नहीं हो रहा है। न ज्ञातवान, उसको ब्रह्म का बोध नहीं हो रहा है। इस प्रकार से एवं विधा गाथा लोके प्रगीयते, इसी प्रकार की गाथा एक कथा लोक प्रसिद्ध है, न पुराणादेशो पठ्यते, यह कथा कहीं पुराणों में आपको नहीं मिलेगी। कहें विष्णु शिव वराहादि पुराणों में ढूंढने लगो तो ये महात्माओं की भैंस की कथा नहीं मिलेगी, ये तो लोक में प्रसिद्ध है कहने का अर्थ है, इसलिए लोक शब्द का प्रयोग किया। तरही तथा विदस्य तस्य कथम ज्ञानोत्पत्ति इति आह, कहते फिर इस प्रकार का प्रतिबंध है तो तथा विदस्य तस्य कथम ज्ञानोत्पत्ति ही, यदि ऐसी स्थिति है कि वो भूतकालिक प्रतिबंध है तब फिर उसको ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी, फिर तो ज्ञान होगा ही नहीं। हम कितने साधना करें, अरे भाई हमारा मन तो किसी का भैंस में अटका हुआ है, किसी का कहां अटका हुआ है, किसी का कहां अटका हुआ है। एक बाबा जी मेरे साथ में आया था, कई साल हो गए, 10-12 साल हो गए होंगे, उम्र वाला था, बरसों से आश्रम में आता रहा, मैं संन्यास लूंगा संन्यास लूंगा, अति आग्रह था। तो गुरुजी ने मुझे कहकर के उसको संन्यास तो नहीं दिलवाया पर ब्रह्मचारी के कपड़े दिलवा दिए, साधु वेश दिलवा दिया, ब्रह्मचारी बना। उसको कहा तो आश्रम में रह या गौ सेवा कर, गुरु सेवा कर, आश्रम का झाड़ू लगा, बोले नहीं। उसको हालांकि पूरा विचार सागर कंठस्थ था, बिल्कुल ग्रामीण आदमी था, पांचवी पास भी नहीं होगा, पर पूरा विचार सागर विचार चंद्रोदय एकदम कंठस्थ, वेदांत का अभ्यास तो था ही, रुचि तो थी, देख करके गुरुजी ने कपड़े दिलवा दिए, आ गया साथ में, मेरे साथ बंबई भी आया, प्रेमपुरी आया, वहां कांदीवली भी रहा, इंदौर में भी, वहां गीता भवन में गया, 2-3 महीने प्रवास में साथ में रहा। वापस गए तो घरवाले पता लगाते रहे कि सन्यासी जी वापस कब आ रहे हैं, वहां जाने के बाद श्रीमती जी आ गई आश्रम में, श्रीमती जी आई तो गुरुजी ने कहा आई है तो बात कर लो, बात करने में क्या है। तो आश्रम के बाहर कोई जगह थी, वहां बैठ करके दोनों बात करने लगे तो घंटे चले गए, उनकी बात ही पूरी न हो। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जरा देखो तो सही, बहुत देर हो गई, क्या कर रहे अब तक वो लोग। तो बाहर जाकर के देखो तो सीढ़ियों के एक बगल तो श्रीमती जी की आंखों से पानी टपक रहा है और एक तरफ वो सन्यासी जी की आंखों से पानी टपक रहा है। जग गया पुराना सने, उस समय तो हाथ का हाथ तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, श्रीमती वापस चली गई, बाबा जी रहे आश्रम में। 10-20-25 दिन के बाद सवेरे सवेरे आरती हुई तो बाबा जी आरती में नहीं आए। गुरुजी ने कहा वो ब्रह्मचारी कहां गए, कमरे में जाकर के देखा तो दरवाजा खुला और बाबा जी कहां गए पता नहीं। 10-5 दिन के बाद में पता लगा कि वो जैसा था वैसा ही हो गया। ये क्या हुआ, प्रतिबंध हुआ है कि नहीं बताओ। शास्त्र चिंतन भी किया है, उपनिषद भी पढ़ी, क्या हो? प्रक्रिया ग्रंथ भी पढ़े हैं, विचार सागर विचार चंद्रोदय से बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ का अध्ययन किया, लेकिन वो श्रीमती का जो स्नेह था वो महिषी स्नेह हो गया। देख लो राजा को रानी का स्नेह, जैसे श्रीमान को श्रीमती का स्नेह खींच करके वापस ले गया। ये होता है प्रतिबंध, नहीं होने देता बहुत, आत्मज्ञान नहीं होने देता। इस प्रकार से कहते हैं जब सभी को कोई न कोई प्रतिबंध है तो ज्ञान तो होगा ही नहीं। यहां कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उच्चारण करके देखो श्लोक को, उसका समाधान मिलेगा। अनोश्रत्य गुरु स्नेहां
महेश्याम तत्त्वमुक्तवान् ततो यथावद् वेदैष प्रतिबन्धस्य संक्षयात् अनुसृत्य गुरुः स्नेहं महिष्यां तत्त्वम् उक्तवान् ततः यथावद् वेद एष प्रतिबन्धस्य संक्षयात्। अब देखो वो जो भिक्षु महाराज था इसकी कथा तो मैंने आपको सुनाई दी। कहते गुरुः महिष्यां स्नेहं अनुसृत्य तत्त्वम् उक्तवान्। तब वो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने देखा कि चेला राम को तो वो भैंस का स्नेह है ना, वही बाधक बन रहा है, वो ब्रह्मचिंतन नहीं होने दे रहा है, इसलिए उसका ही अनुसरण करके अनुसृत्य भैंस से मन को अलग नहीं किया करे, तो भैंस में ही चिंतन कर। पर भैंस का चिंतन नहीं, भैंस में ही चिंतन करे, समझ में आ रही है, चिंतन भैंस का नहीं, भैंस में ही चिंतन कर। हाँ नहीं 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 नहीं, वो तो भैंस का चिंतन हो जाएगा। जहां जो स्नेह है भैंस में, जो स्नेह लगा हुआ है, उसका अनुसरण करके कि जिस जगह पर जिस वस्तु में जिस में आपका स्नेह लगा हुआ है, आप वृत्ति को वहीं रख लो, वृत्ति को हटाओ मत, जहां स्नेह किया है वृत्ति वहीं रहने दो, वृत्ति को भी दूसरी जगह ले जाने के बगैर कहीं न कहीं तो वृत्ति लगानी पड़ेगी ना। ध्यान में क्या है, निश्चय पूर्वक ध्यान, निधि ध्यासन की स्थिति है, निश्चय न ध्यातव्यम, तो निश्चय पूर्वक ध्यान करना है कि वो आत्मा है, परमात्मा का ही जो ध्यान करना है। और परमात्मा के ध्यान में पहले ये होता है कि जो वृत्ति की एक तानता है, बार बार वृत्ति एक ही एक जगह पर जाए, तो उसकी वृत्ति तो अनायास ही भैंस में तो जा ही रही थी। बस केवल इतना है कि जैसे वो एक ने उदाहरण दिया था मैंने गिलास का, खाली गिलास और भरा गिलास देखने का, तो देखने वाले की दृष्टि तो गिलास पर ही है, पर एक गिलास के खाली अंश को देख रहा, एक गिलास के भरे अंश को देख रहा, गिलास में से वृत्ति नहीं हटी है, गिलास पर आकर नजर होती है, पर एक गिलास में भरे अंश को देखता है, एक खाली अंश को देखता है, ऐसे ही वृत्ति भैंस पर ही है, पर भैंस में जो भरा हुआ अंश है वो अस्थिभाति प्रियता है, अस्थिभाति प्रियता है। अरे भैंस में ही उस परमात्मा को देखो ना। सर्वम खलु इदम ब्रह्म जब कहा उपासना में, तो ये भी उपासना ही है चिंतन, तो वहां पर ही ब्रह्म को देखना शुरू कर दो। बहुत बार जो कहते हैं भाई घर छोड़ने की जरूरत नहीं, तो क्या बोले, घर में जो है ना वहीं सेवा करके भगवान की सेवा समझ लो, बालक है ये, मेरा पौत्र है ये, मेरा परपौत्र है ये, मेरा लाडला मेरा प्यारा, अरे यूं नहीं समझ लेते कि हमारा बालक कृष्ण है, दृष्टि बदल गई है, तो बालक ही, पर विचार हो गया कि ये तो साक्षात मानो लड्डू गोपाल ही आ गए, लड्डू गोपाल का ध्यान होना शुरू हो गया बालक के अंदर। ऐसे ही उसे भैंस में देखो कि परमात्मा ही भैंस का रूप लेकर के आए हैं, इसमें अस्थि रूप से तो परमात्मा ही बैठा हुआ है, ये है करके जो मालूम पड़ रहा है, ये ज्ञान भी परमात्मा का ही हो रहा है। इस प्रकार से इसमें जो प्रियता आई है, हार मास के पुतले में अगर विचार करके देखो, वही भैंस है, उसकी चमड़ी अलग कर दे, उसका रक्त अलग हो जाए, मांस अलग हो जाए, प्रियता रहेगी उसमें, तो नाम रूप की प्रियता में तो विकार पैदा आएगा, लेकिन जो स्वरूप है वो नित्य प्रिय है। इस प्रकार से भैंस में ही जो चिंतन करते हैं, गुरु जी ने यही कहा तत्व मुक्तवान, उस स्नेह को गुरु ने भैंस के अंदर ही अनुसरण करके और तत्व का उपदेश दिया कि भैंस में जो चिद अंश है सद अंश है, आनंद अंश है, उसको लेकर के तुम चिंतन करो। ततः यथावद एष वेद। तब उसके बाद यह हुआ कि जैसा है उसको वैसा ही वहीं समाधि लग गई, ज्ञान हो, ध्यान हो गया। क्यों? प्रतिबंधस्य संक्षयात, वो भूतकालिक जो प्रतिबंध था उसका क्षय हो जाने के कारण है। और वहीं पर उसी आधार पर ध्यान, ये ध्यान ही तो बताया जाता, ध्यान का अनिवार्य नहीं कि एक चीज विशेष पर ही ध्यान करोगे तब ध्यान होगा। आप ध्यान ग्रंथों को देखो, गीता में आया कि ध्यान के लिए बताया है, पंचम अध्याय में कहा कि भ्रुवर मध्य प्राण आवेश सम्यक। ध्यान कैसे करो? बोले दृष्टि को भ्रू कुटी के मध्य में स्थिर करके करो। और छठे अध्याय में जाकर के भगवान कहते नासिकाग्रम स्वम दिशा च अनुलोकयन, अन्य दिशाओं को नहीं देखते हुए नासिकाग्र भाग को देखो। अब ध्यान भ्रकुटी में करें कि नासिकाग्र भाग में करें? एक ही भगवान एक ही ग्रंथ में दो जगह बता रहे हैं, उसका अर्थ है ध्यान आप कहीं पर भी करो, कहीं पर भी करो, भ्रकुटी में करो, नासिकाग्र भाग में करो, बच्चे में करो, भैंस में करो, महिषी में करो, कहीं भी करो, पर उसके अंदर जो सच्चित आनंद अंश है नाम रूप को बाध करके उसका चिंतन करो, क्योंकि वो सर्वत्र है। तो जहां ध्यान करोगे वहीं उसका अनुभव होने लगेगा, ये है उसका कारण है। आओ फिर ये वर्तमान कालिक प्रतिबंध और भविष्य कालिक प्रतिबंध बड़े गजब के हैं। और वर्तमान कालिक प्रतिबंध तो फिर पांच प्रकार का है, विषयाशक्ति, प्रज्ञा, मानदम, इंद्रियम, कुतर्क, विप्रेय और दुराग्रह, बहुत विस्तार है। और कल से सचमुच में एक बहुत अच्छे विद्वान आप तो जानते ही हैं, पहले भी श्रवण किया है उनको, दिव्य चेतन जी महाराज, तो स्वाध्याय करवाएंगे, पूरा उसका लाभ लेना है। स्वाध्याय की परंपरा बहुत पवित्र परंपरा है। मैं तो यह कहता हूं कि प्रवचन छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर स्वाध्याय मत छोड़ा करो। हां, स्वाध्याय नहीं छोड़ना, मोती तो यही मिलेगा। एक बार कहीं विचार आया कि तीन आदमी मानसरोवर में गए, कैलाश मानसरोवर, तीनों ही एक साथ छलांग मार गए। किस लिए? सुना मानसरोवर में मोती मिलते हैं, तो छलांग मारी, एक आदमी को बेचारे को तैरना नहीं आता था, वहीं डूब गया। दो को तैरना आता था, तैरने लगे, उतने में कहा रे मोती नहीं दिख रहा। उनमें दो में से भी एक व्यक्ति कहने लगा कि मोती तो तह में नीचे मिलेंगे, ऊपर नहीं तैरते वो, नीचे मिलेंगे, उसके लिए गोता लगाना पड़ेगा। तो दूसरा कहने लगा मुझे तैरना आता है पर गोता लगाना नहीं आता। तो वो बोला ठीक है तुम तैरते रहो, मरोगे नहीं, तुम्हारे प्राण बचेंगे, पर मैं तो मोती लेके आता हूं, मुझे तो गोता लगाना आता है। तो तीसरा, तीन में से तीसरा एक ही व्यक्ति गोता लगाया, नीचे गया और ऐसे हाथ घुमाया तो 10 20 50 मोती तो हाथ में आ गए। अब उस सरोवर में तो छलांग तो तीन ने मारी, एक तो डूब ही गया, एक तैरता रह गया, पर मोती तो एक को ही मिला। ये मनुष्य शरीर है महाराज, जीव पता नहीं कहां से आके यहां छलांग मारी, मनुष्य सरोवर में छलांग मारी, ज्यादातर तो डूब ही गए बेचारे, विषयों में डूब गए, तैरना ही नहीं आया। दो व्यक्ति तैरना सीख से जानते हैं, सत्संग में आए, वो सत्संग में आ गए वो कभी डूबेगा नहीं, ये बात तो पक्की है। प्रवचन में आ गया वो कभी नहीं डूबेगा, पर कोई गारंटी नहीं है कि उसको आत्ममोती मिल ही जावे। वो तैरता है केवल, तैरना आता है उसको, तैरना सीखेगा, पर यदि गोताखोर बनना है, आत्ममोती पाना है, तो गोताखोर बनने की ट्रेनिंग स्वाध्याय में होती है। हाँ, वो ट्रेनिंग स्वाध्याय में होती है। जो आत्ममोती मिलता है उसके लिए, जिसको आत्मधन आत्ममोती चाहिए, स्वाध्याय को कभी मत छोड़ो। बहुत जिन्हों आप लोग तो देख ही रहे, अनुभव कर रहे हैं कि स्वाध्याय कर लिया तो सब कुछ कर लिया आपने, सारी साधना हो गई। और ये मोती पाने की जो सुविधा है प्रेमपुरी आश्रम में ही मिल रही है, बंबई जैसी नगर में जहां माया मिलती है वहां आत्ममोती मिल रहा हो, इससे बढ़िया और क्या हो। इसलिए पवित्र संस्था में बैठ करके आपके साथ हम भी मोती खोजने की कोशिश करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। आप सबकी ओर से पूज्य महाराज जी को महाराज जी के पुण्य चरणों में वंदन करते हुए महाराज जी कहना चाहूंगा कि अगर हम अकेले ही है तो पहले तो कोई धक्का मारने वाला चाहिए तो अंदर डूबे, डूबेंगे नहीं तब तैर नहीं सकेंगे महाराज जी। डूबना भी जरूरी है कोई धक्का मारने के लिए कि भाई प्रेमपुरी में जाओ, तो किसी ने धक्का मारा हम यहां आए। अभी तैरने के लिए सत्संग है, व्याख्यान है, कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे संत मिलते गए, थोड़ा थोड़ा तैरना सीखा महाराज जी, और अभी स्वाध्याय में भी आ गए और यहां गोता लगा रहे हैं। तो जीवन में तीनों प्रक्रिया एक हमें जरूरी है और वही हम कर रहे हैं। उसमें ईश्वर की बड़ी कृपा है, जिसने धक्का मारा उसने भी हमें सार्थक करने के लिए यहां तक पहुंचाया। सत्संग जो आपसे हमने प्रातः प्रवचन में सुना और कल से हम दिव्य चैतन्य जी महाराज द्वारा ऐतिरेय उपनिषद इस पर 7:30 से 8:30 प्रवचन सुनेंगे। सायं प्रवचन में भी दिव्य चैतन्य जी महाराज द्वारा 16 से 22 हम गीता अध्याय 13 पर प्रवचन होगा। सायं 6 से 7:30 के दरमियान उसका भी आनंद लेंगे और स्वाध्याय प्रवचन में भी दिव्य चैतन्य जी महाराज रहेंगे। तो यहां गोता भी मारना है, तैरना भी और अपने को मोती भी ढूंढना है और वही स्वाध्याय है हमारा। और पूज्य महाराज जी अगले वर्ष तीनों कराने वाले हैं, हमें गोता भी लगाने को सिखाएंगे, वो भी होगा, तैरना भी होगा और जो मोती स्वाध्याय के हिसाब से मिलेंगे यानी स्वयं प्रवचन भी महाराज जी का अगले साल रखा गया है। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, महाराज जी के श्री चरणों में आप सबकी ओर से वंदन करते हुए हरिओम। कल से ध्यान रखें 7:30 से 8:30, 9:15 से 9:30 और सायं सुंदर प्रवचन है दिव्य चैतन्य जी महाराज द्वारा, तीनों का हम लाभ लें। हरिओम।
हरिओम। एक सेकेंड, हम कुछ नया करने जा रहे हैं। हमारे जो ट्रस्टी है हेमेंद्र भाई कोठारी, उसकी कुछ आज्ञा हुई है स्वामी जी, धन लाभ तो है ही दे रहे हैं, मगर उसकी बहुत इच्छा है कि शाम को जैसे हम गीता चिंतन माला करते हैं ऐसे हम जो संत हमारे बीच में है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाए। तो सुबह के जितने भी प्रवचन कर आएंगे संत उसका हम शाम का भी प्रवचन यहां रखेंगे। अगले साल से एक कड़ी हम जोड़ रहे हैं, उसमें स्वामी जी का बड़ा आग्रह था। कल हम मिले थे स्वामी जी को और स्वामी जी आप ही के द्वारा जो निर्धारित है अब हम संतों के साथ गिरीश भाई सब मिलके हेमेंद्र भाई कोठारी स्वाध्यायी शाम का प्रवचन की धारा में कुछ हर साल नया सब्जेक्ट लेके आएंगे। स्वामी जी कुछ कराना चाहते हैं व्यक्तित्व विकास, ये सब्जेक्ट के ऊपर बोलेंगे स्वामी जी। 11 से 16 नवम्बर 7 दिन का प्रोग्राम रहेगा और हर संत जो हमें सुबह प्रवचन करते हैं या स्वाध्याय कराते हैं शाम को भी उसका हमको लाभ मिलेगा, ये हमारा प्रयास रहा है। तो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुट सके, तो हम हेमेंद्र भाई कोठारी के बड़े आभारी हैं जो ये हमारे सामने रखा है और हम ये सब काम साथ में मिलकर आपका सहयोग के साथ करेंगे। हरिओम तत्सत।